नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5% पर रखने का फैसला लिया। और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रसिद्ध मसाला कंपनियों के असुरक्षित पाए गए मसालों को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने श्री मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा और एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने इसका समर्थन किया। राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव करते हुए कहा कि वे इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल नेताओं की ही नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की इच्छा है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षो में महत्वपूर्ण पहल की है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने श्री मोदी के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि वे सभी एक साथ आए हैं और अब सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए उन दलों का समूह नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं बल्कि ये राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है।
एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश, और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते ये सबसे सफल अलायंस है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री मोदी को शपथ दिलाएंगे, साथ ही नए मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई जाएगी। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5% पर ही रखने का फैसला लिया है। शीर्ष बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ दर 6.25% पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ दर तथा बैंक दर 6.75% पर ही रखी गई है। शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी। बैठक के बाद निर्णयों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति सामान्य मॉनसून के अनुमान के बीच खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर बनाए रखेगी। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में नई श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें हम श्रोताओं को इन कानूनों में किए गए नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको आर्थिक अपराधों के संबंध में लाए गए नए प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं। आर्थिक अपराधों में अब आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेनदेन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी और व्यक्तियों या बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने की योजनाएं जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं। यदि अपराध के कारण जीवन की हानि होती है तो अपराधी को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा, साथ ही कम से कम 10 लाख रूपये का अनिवार्य जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा संगठित अपराधों में सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिए उचित दंड के प्रावधान मौजूद हैं। नए प्रावधानों के जरिए घोषित अपराधियों को उनकी संपत्ति जब्त करके दंडित किया जाएगा। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अदालत को घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय ऐसे नवाचार अपनाएं जिससे विद्यार्थी स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने के साथ वैश्विक रूप में अपने आप को समर्थ बना सकें। श्री मिश्र आज बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षा शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि इस पड़ाव से आगे जीवन नए ढंग से शुरू होता है।
नई शिक्षा नीति की जो बड़ी विशेषता यह है कि अब वृहद स्तर पर विद्यार्थी और समाज के बीच संबंध बनाने से जुड़ी है। अभी तक यह हो रहा है विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करता है, परंतु उसका उपयोग भविष्य में कैसे होगा इस पर अभी चिंतन नहीं है। पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही जब शिक्षा में जुड़ती है तभी भविष्य की उन्नत राहों का निर्माण होता है। नई शिक्षा नीति इसी पर मूल रूप से आधारित है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि बीकानेर की संस्कृति और यहां के साहित्य आलोक में ये विश्वविद्यालय नई पीढ़ी को दिशा दे। इससे पहले राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया। दीक्षांत समारोह में 2021 की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तीर्ण 1,26,880 अभ्यर्थियों को उपाधि दी गई। साथ ही इसी वर्ष की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले 54 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रसिद्ध मसाला कंपनियों के असुरक्षित पाए गए मसालों को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में मसालों के सैंपल लेने के लिए पिछले महीने विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों सहित विभिन्न कंपनियों के मसालों के प्रदेशभर में कुल 93 नमूने लिए गए थे। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ नमूनों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की मात्रा काफी अधिक पाई गई। श्रीमती सिंह ने बताया कि कुछ मसालों की निर्माण इकाई हरियाणा और गुजरात में होने के कारण वहां के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इस बारे में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इन मसालों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि जांच में एमडीएच, एवरेस्ट, गजानंद, श्याम, शीबा, ताजा जैसी नामी कंपनियों के मसाले अनसेफ पाए गए हैं। श्री खान ने बताया कि इन कंपनियों के अन्य मसालों तथा अनसेफ बैच के अलावा अन्य बैचेस के भी नमूने लिए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई जगह आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर में सुबह से आसमान में धूल छाई रही। दोपहर में कुछ देर तेज आंधी के बाद हल्की बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी आंधी से जनजीवन पर असर पड़ा। पाली में कई दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी से बचाव के लिए मंडिया रोड स्थित पेट्रोल पंप पर आमजन के लिए फव्वारे लगाए गए हैं। साथ ही समाजसेवियों द्वारा राहगीरों को कैरी की छाछ पिलाई जा रही है। चूरू में आज दोपहर बाद आंधी चली जिससे लोगों को परेशानी हुई। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र में आज पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। दोपहर बाद कुछ देर के लिए तेज गर्जना के साथ हल्की बरसात हुई जिसके कारण तापमान में गिरावट हुई है। शाहपुरा जिले के फूलियां कला उपखंड में मेघ गर्जना के साथ आंधी और हल्की बारिश हुई। जोधपुर ग्रामीण और टोंक जिले में भी आंधी बारिश के हालात रहे। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में एक यूनिट का बॉयलर फट जाने से बड़ा हादसा हो गया। पुलिस और जिला प्रशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, नगर पालिका झालरापाटन की करीब एक दर्जन दमकलें थर्मल परियोजना स्थल पर तुरंत पहुंच गए। बाद में प्रशासन ने बताया कि ये मॉक ड्रिल था और इसमें सभी विभागों की कार्यक्षमता सही पाई गई। विकसित राजस्थान 2047 के संबंध में दौसा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के 100 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला में कृषि उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, डेयरी और कृषि विपणन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, डेयरी क्षेत्र में नवाचारों के बारे में बताया गया। भरतपुर में भी इसी तरह की कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में कृषि जोत की चकबंदी, बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, शहद का समर्थन मूल्य निर्धारित करने, जैविक खेती के किसानों को अनुदान और सहकारी समितियों की आधारभूत संरचना तथा विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने गर्मी के मौसम को देखते हुए गौशालाओं को 1,40,00,000 रूपये का अतिरिक्त प्रावधान मंजूर किया है। इस राशि से गौशालाओं में पानी की अतिरिक्त सप्लाई, खाद्य आपूर्ति और छाया की व्यवस्था की जा सकेगी। गौपालन विभाग के निदेशक शालिनी माथुर ने अजमेर में यह जानकारी दी। उन्होंने जिले की पुष्कर घाटी, लोहारगल और नारेली गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान पशुपालन उपनिदेशक ने बताया कि जिले में 36 गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। उधर पाली जिले में कुल 254 गौशालाओं का सर्वे किया गया है। इनमें 88,000 से ज्यादा गौवंश संधारित है। राज्य सरकार द्वारा छोटे गौवंश के लिए 20 रूपये और बड़े गौवंश के लिए 40 रूपये रोजाना की दर से चारा पानी के लिए भुगतान किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेन्द्र मोदी को अपना नेता चुना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5% पर ही रखने का फैसला लिया है। और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रसिद्ध मसाला कंपनियों के असुरक्षित पाए गए मसालों को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।